ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण परमेश्वर भगवान है। मथः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण के ऊपर कोई और कुछ नहीं है और सर्वपूर्ण कल्याण होता है सभी जीव के लिए यदि वो कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो भक्ति श्रेष्ठ पंथ है। भक्ति का मतलब कृष्ण विषयक भक्ति, भक्ति जिसमें वो भक्ति का मतलब सेवा, वो भक्ति जिसमें वो सेवा का पात्र है या विषय है श्री कृष्ण, कृष्ण भक्ति। और वो भक्ति मातृ पितृ भक्ति से श्रेष्ठ है। देश की भक्ति, ब्रह्मा शिव इंद्र वायु मरदगण आदि देवताओं की भक्ति से श्रेष्ठ है। साई बाबा की भक्ति से श्रेष्ठ है। और सभी प्रकार की भक्ति से श्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति, क्योंकि भगवान कृष्ण भक्ति के वास्तविक पात्र है। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। हम शिव, गणेश, माता जी इत्यादि की भक्ति कर सकते हैं, परंतु शिव, गणेश, माता जी और सब बड़े बड़े देव और देवियों, वे भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। महादेव स्वयं कहते हैं, आराधनानं सर्वेशं विष्णोर आराधनं परम, कि सभी प्रकार की पूजा उपासना आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। और उससे तस्मात् परात्परं देवी तदीयानं समर्चनम्, इनकी भक्तों की भक्ति करना कृष्ण भक्ति से, विष्णु भक्ति से और अधिक है। वो भक्ति जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंटरनेट कट गया, इंटरनेट इज वर्किंग, ये रिकॉर्ड भी चलते, तो खाली इससे साउंड चाहिए फिर। हरे कृष्ण हाँ आया, हरे कृष्ण लाइट ज़्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा हो यदि लाइट बंद हो, क्योंकि इससे हम और ज़्यादा श्रवण करेंगे। तो कृष्ण कृष्ण के भक्तों की भक्ति करना वो कृष्ण की भक्ति से अधिक है। कृष्ण के भक्तों की सेवा करना कृष्ण की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कृष्ण परम सेव्य है और कृष्ण का पसंद है कि इनके भक्तों की सेवा करना होता है। तो ये सब भक्ति तत्व का रहस्य है। तो समझना चाहिए कि हम भक्ति बहुत है, भक्ति का मतलब कृष्ण कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति भी है, कृष्ण और विष्णु अभिन्न है, फिर भी कृष्ण सब नारायण विष्णु के आदि रूप है और भगवान कृष्ण का माधुर्य और लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य माधुर्य और रूप माधुर्य विष्णु से अधिक है। तो विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, वे जब भक्ति बोलते हैं उनका मतलब कृष्ण की भक्ति। तो विष्णु भक्ति से भी अधिक गौरवशाली है कृष्ण की भक्ति। और वो भक्ति किस प्रकार होने चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल येना कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। उत्तमा भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें कोई अपना तथाकथित स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है। किस लिए भक्ति करने चाहिए? भक्ति का हेतु भक्ति है। भक्ति तो इतना मधुर है, भक्तों भक्ति करने से इतना संतुष्ट आनंदित होते हैं कि इससे मेरा प्रभु कृष्ण संतुष्ट होते हैं कि वे भक्ति का हेतु से भक्ति करते हैं। हम भक्ति कर सकते भगवान से कुछ मांगने के लिए, हे भगवान मुझे पैसा दो, हे भगवान, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना हो सकती। परंतु शुद्ध भक्ति में उस प्रकार की कोई याचना नहीं है। भक्तों किस प्रकार की याचना करते हैं भगवान से? हे भगवान मुझे और भी भक्ति दे, और भी सेवा करने का अवसर दे। तो इस प्रकार भक्ति इतना शुद्ध है कि भक्तों भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, केवल और भी सेवा करना का मौका के लिए प्रार्थना करते। तो भगवद गीता में प्रसिद्ध है कि भगवद गीता में विशेषकर चार पंथ का वर्णन है, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। और एक प्रचलित भूल धारणा है कि सब मार्ग एक ही है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग। तो किसी भी व्यक्ति का स्वयं का विचार के अनुसार या स्वयं की इच्छा के अनुसार जो भी मार्ग अच्छा लगता है तो वो तो पालन कर सकते हैं और सब लोग अंत में एक ही फल मिलते हैं। और इस प्रकार कर्म ज्ञान योग भक्ति सब सबका एक ही तत्पर एक ही स्तर पर है। कर्म का मतलब विशेषकर इस कर्म का मतलब किसी भी क्रिया करना, परंतु शास्त्र में विशेषकर भगवद गीता में कर्म शब्द का कर्म क्या है, कर्म सुबह का समय ब्रश करना वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो सब कुछ जो हम करते हैं शरीर से ही सब कुछ जो हम करते हैं वो सब कर्म बोलते हैं, परंतु शास्त्र में वो कर्म शब्द का विशेष अर्थ है। तो धर्म के अनुसार कर्म करना पुण्य कर्म, वो पुण्य कर्म बोलते हैं, अथवा वो कर्म जो वैदिक शास्त्रों की विधि के अनुसार और विरोध नहीं है वो कर्म बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार कर्म करना वो कर्म बोलते हैं, और उस प्रकार काम करने से कांक्षांता कर्मणां सिद्धिं यजन्ति देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर् भवति कर्मज। कर्म देव देवी गण की पूजा करना है और यज्ञ भी करना है, पुण्य कर्म जैसे दान देना और जन कल्याण के लिए कुआ निकालना और तालाब बनाना ऐसे, और रास्ते के पास वृक्षों रोपण करना, तो ये सब पुण्य कर्म होते हैं। गोदान गोसेवा ये सब पुण्य कर्म है, ये वो सब कर्म बोलते हैं। और इससे वो कर्म करने से वो कर्मी की कामना है स्वर्ग जाना। तो स्वर्ग जाने से क्या होते हैं, सुख इंद्रिय सुख प्राप्त करना, परंतु कर्म करने से वो सुख जो मिलते हैं वो सब इस भौतिक संसार में है, और इस भौतिक संसार का स्वभाव है पूरा दुखमय। तो इसलिए वो ज्ञानी जन वो इस पूरा जगत की स्थिति देखते हैं, विचार करते हैं कि दुखमय जगत से हमें मुक्त होना चाहिए, और इसलिए वे विचार करते हैं। तो ये माया है, ये सत है, ये असत है, और इस प्रकार विवेचना करके वे ज्ञानी जन जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं वे मायिक और भौतिक दोनों से विवेक करके केवल जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में विवेक करते हैं, और केवल जो आध्यात्मिक है वो सब करते हैं, और काम से साधारण काम से निवृत्त होते तो नहीं करते। बन ज्ञानियों का प्रयास है सभी प्रकार का कर्म बंद करना और ज्ञान में स्थित होना, और इस प्रकार उनकी इच्छा है मोक्ष प्राप्ति। और योगियां दो प्रकार के योगी है, एक्चुअली बहुत प्रकार है, परंतु सामान्यतः योग इस कर्म ज्ञान योग भक्ति ये चारों कहने में वो योग शब्द का अर्थ है तो मन को स्थिर करना, और दो ऐसे ध्यान करने से ध्यान योग करने से दो प्रकार के योगी है। एक है जो ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, जो विष्णु का रूप पर ध्यान करते हैं, और दूसरा है जो केवल ज्योति पर ज्ञान कहते हैं। तो एक प्रकार योगी विष्णु का रूप ध्यान करते हैं, परंतु सामान्यतः दोनों प्रकार योगियों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। जो विष्णु के रूप पर ध्यान करते हैं तो शायद वो विष्णु रूप से आकृष्ट होने से भक्त हो सकते हैं, परंतु दोनों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। और भक्ति है जीव का मूल स्वभाव। भक्ति में कर्म भी करना है, जैसे झाड़ू लगाना मंदिर में, वो भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा भावना से मंदिर में झाड़ू सेवा करते हैं, वो भक्ति है। और कोई भी यदि अपने घर में झाड़ू लगाते वो तो भक्ति नहीं है, वो केवल कर्म है। और कोई यदि मंदिर में झाड़ू सेवा करते पैसा प्राप्त करने के लिए, तो वो भक्ति नहीं है। जिनका उद्देश्य है इस कर्म से भगवान संतुष्ट होंगे, वो कर्म तो साधारण का नहीं, वो भक्ति है। और ज्ञान से यदि कोई प्रयास करते हैं भगवान के बारे में, भगवान के नाम गुण रूप लीला ये सब विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वो साधारण ज्ञान नहीं है, वो भक्ति का एक अंग है। और योग ध्यान वो भक्तों जो प्रयास करते हैं भगवान का स्मरण करना, वो ध्यान तो साधारण ध्यान नहीं है, वो भक्ति है। तो कर्म ज्ञान योग सब भक्ति में सम्मिलित है। और सब कर्म ज्ञान और योग जो भक्ति से निमित्त, वो साधारण कर्म ज्ञान और योग से पृथक है। सब लोग तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करते क्योंकि जीव का स्वभाव है क्रियाशील, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्। भगवद गीता में श्री कृष्ण अकर्म अर्थात कर्म बंद करना की धारणा के बारे में मंतव्य करते हैं कि सब कर्म बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्। हमारा स्वभाव से, क्योंकि हम जीव हैं, इसलिए हम बाध्य है कि हर एक क्षण में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ते हैं। तो हमारा स्वभाव है क्रियाशील। तो कर्म कर्म है, हमें कर्म करना है। तो कर्म का मतलब कुछ ना कुछ करना। और कर्म शब्द में विकर्म है, अर्थात वो कर्म जो वैदिक शास्त्र की विद्याओं के विरोध, वो विकर्म अथवा पाप कर्म, वो विकर्म है। और पुण्य कर्म जो वैदिक शास्त्र की विधियों के अनुसार है, जिसका लक्ष्य है स्वर्ग जाना और भौतिक सुख प्राप्त करना, और निष्काम कर्म भी है जिसमें धर्म का हेतु से कर्म करना है। परंतु वो कर्म का फल भोगना की इच्छा नहीं है, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। कामान्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध वचन है कि तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, परंतु फल भोगी होने की इच्छा नहीं होना चाहिए। तो काम करो परंतु फल से अनासक्त हो, इसको कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग का मतलब काम करना केवल धर्म पालन करने के लिए। तो कर्म श्रेष्ठ कर्म है, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो, तो कि मैं परम हूँ, कृष्ण परम है, और इस वो ज्ञान से कर्म करना किस प्रकार कृष्ण सेवा, मत कर्म कृत, कर्म कृष्ण के लिए। यद करोषि यद अश्नाषि यज्जुहोषि ददाति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय्या तत् करोष्व मद अर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो खाते हो, यद करोषि यद अश्नाषि तपस्या दान, सब कुछ जो तुम करते करो इस प्रकार मुझको अर्पण करके। तो ये कर्म है, परंतु वो कर्म तो साधारण काम नहीं है, वो भक्ति है। तो श्रेष्ठ कर्म है भक्ति, और श्रेष्ठ ज्ञान है भक्ति। श्रेष्ठ ज्ञान है कि मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, मैं सनातन आत्म हूँ। ज्ञानी जन इस वचन को स्वीकार करते हैं। कि मैं आत्मा हूं, ज्ञानी जन स्वीकार करते हैं, परंतु कि श्री कृष्ण परमात्मा परमेश्वर भगवान है वो तो नहीं जानते। तो गीता में भगवान कृष्ण का ज्ञान की प्रशंसा है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में ज्ञान से और कुछ पवित्र नहीं है, अर्थात ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र है। परंतु श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि बहुनम जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः, कि बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति जो ज्ञानी है अंत में इस सिद्धांत समझते हैं कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है, वासुदेव भगवान है, और इसलिए वो वासुदेव कृष्ण के शरण में आते हैं। अर्थात ज्ञान सबसे पवित्र है, परंतु वो ज्ञान क्या है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। और भी भगवान कृष्ण कहते हैं राजा विद्या राजगुह्य पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। भक्ति के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजा विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है कृष्ण भक्ति, सबसे गुह्य है, सबसे पवित्र है। और इस भक्ति करने से हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि कितना महान है इस भक्ति, और इस भक्ति करने से हम भक्ति भगवान और इनकी भक्ति शक्ति की दया से हम सदैव सुखी रहते हैं। तो इस प्रकार कर्म से ज्ञान परम है, श्रेष्ठ कर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति, श्रेष्ठ ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसलिए इनकी सेवा करना भक्ति। और भगवद गीता में पूरा षष्ठम अध्याय का विषय है योग, ध्यान योग, तपस्या के साथ ध्यान करना। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मी से, तपस्वी से, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ, तस्मात योगी बवार्जन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। किस प्रकार योगी? कर्म योगी है, तपस्चारी योगी है, ध्यान योगी है, राज योगी है, अष्टांग योगी है, क्रिया योगी है, अलग अलग प्रकार के योग है। श्री कृष्ण का विचार इसके बारे में है कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्रकार के योग में श्रेष्ठ है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, जो वो योगी जो उसका हृदय में मुझ पर सदैव ध्यान रखते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, वो योगी श्रेष्ठ, वो योगी श्रेष्ठ युक्त है। योग का मतलब युक्त होना। हमारी वर्तमान स्थिति में हम परम सत्य से अयुक्त है, वियोग होते। तो योग का मतलब हम जो आत्मा है वो परम सत्य के साथ नियुक्त हो, वो योग का मतलब युक्ति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकार से युक्त होते। तो परम योग है कृष्ण भक्ति, तो परम योग है भक्ति। तो सब पथ एक ही नहीं है। कर्म करने से स्वर्ग जाना है और उसके बाद इस पृथ्वी पर जन्म लेना, तो जन्मैश्वर्य श्रुतश्री, जो पुण्य कर्मी है तो उसका अगला जन्म तो स्वर्ग में होते, फिर जब पृथ्वी पर वापस आते हैं, वापस आना पड़ते हैं, तो जन्म उच्च कुल में होते, धनवान घर में, और उसका रूप सुंदर है और बुद्धि भी काफी है, बुद्धिमान मनीषी होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल होते हैं, बुद्धिमान है, शिक्षित है, रूपवान है, धनवान है, तो ये सब छिन्न है कि उसका पूर्व जन्म में वो पुण्य कर्म किया था। तो पुण्य कर्म का मतलब पुण्य कर्म करना, उससे भौतिक सुविधा मिलता, परंतु ये सब क्षणिक है। और जितने भी बड़ो एक व्यक्ति हो सकते हैं इस भौतिक संसार में, तो फिर भी उसको भौतिक दुख भोगना पड़ता है। और काल के तरंग के अनुसार एक व्यक्ति जो आज बड़ा है तो कल छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये कर्म मार्ग तो अल्प बुद्धि संबंध लोग के लिए, या मूर्ख लोगों के लिए, और जो बुद्धिमान है ज्ञानी होते हैं, देखते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है और इसलिए उदासीन होते हैं, तो भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते, मोक्ष के लिए प्रयास करते। तो कर्मी ज्ञानी योगी श्रेष्ठ है भक्त, क्योंकि भक्त का लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। कर्मी जन तो स्वर्ग जाते और यहाँ धरती पर वापस आते। ज्ञानी जन जो सिद्ध ज्ञानी और योगी तो मोक्ष प्राप्त होते, भगवान की अंग ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन जाते। और भक्तों की गति है भगवान के चरण में, वैकुंठ में, गोलोक में इनकी सेवा प्राप्त करना। तो स्वर्ग जाना स्थायी अवस्था नहीं है, और कृष्ण सेवा के बिना मुक्ति प्राप्त करना वो सेवा वो स्थिति भी स्थायी नहीं है। परंतु जो भगवान का धाम जाते यद गद्वान निवार्थन थे तद धाम परम मम, वहाँ जाते पूर्ण छिन्मय असीम परमानंद प्रेमानंद सदैव अनुभव करते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो इसलिए भक्ति से वो फल जो मिलते वो श्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो कल धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में कुछ बताया था। तो कर्मी ज्ञानी योगी भक्त तो सब धर्म को पालन करते हैं। इस भौतिक संसार में धर्म अर्थात सदाचार और शास्त्र के अनुसार व्यवहार आचरण करना वो सब के लिए है। वैदिक सभ्यता में चाहे भी एक व्यक्ति कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, भक्त हो, तो सबका धर्म पालन करना चाहिए। और कर्मी जन धर्म पालन करते हैं परंतु उनका लक्ष्य है अर्थ और काम। और जो निष्काम कर्मी है वो कर्म करते हैं, उनका लक्ष्य है केवल धर्म पालन करना। और उस स्तर से तो ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, और ज्ञानियों भी धर्म पालन करते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में भी या योग मार्ग में भी यदि कुछ पाप करना है तो वो बड़ा दिक्कत होता है, और उससे वो ज्ञान साधना योग साधना पूरा नष्ट हो जाते है। और भक्तों भी सामान्यतः धर्म पालन करते हैं परंतु उनका परम धर्म है श्री कृष्ण की संतुष्टि करना। और इसलिए भक्तों तो भक्ति धर्म पालन करने से तो सदैव और सब स्थितियों में साधारण धाम पालन करने से बाध्य नहीं है। इसके बारे में बहुत भूल धारणा है, जैसे महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण तीनों धर्म के विरुद्ध से उनका वध हुआ, परंतु तीनों का वध भगवान कृष्ण का आदेश और इंगित के अनुसार था। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते कि धर्म का स्थापन के लिए आया था, परंतु कृष्ण स्वयं अधर्म करते हैं। लोग जो ऐसे बोलते हैं तो धर्म शब्द का वास्तविक तात्पर्य नहीं जानते, क्योंकि भगवान कृष्ण धर्म का मूर्ति है और धर्म का प्रतीक है और धर्म का चरम गति है। तो भगवान कृष्ण में अधर्म होना संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण ऐसे किए है क्यों? तो एक विशेष प्रसिद्ध कहानी है कि युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज तो द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, आशीर्वाद, द्रोणाचार्य से आशीर्वाद मांगे। और द्रोणाचार्य से प्रार्थना किए, जिज्ञासा किए, तो कैसे मैं आपका शिष्य आपको हत्या कर सकता हूँ, क्योंकि इस युद्ध में हम विरोधी पक्ष में है, इसलिए मेरा आप मुझे प्रशिक्षण दिया क्षत्रिय धर्म युद्ध करने के लिए, तो इस स्थिति में मेरा धर्म है क्योंकि आप दूसरे पक्ष में हो आपको वध करना, तो कैसे ही करना है? द्रोणाचार्य बोले तो संभव नहीं होगा, जब तक मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित रहेगा तब तक मुझको वध करना तो संभव नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर अश्वत्थामा के पास जाकर पूछे थे तो कैसे आपको बात करना, और अश्वत्थामा बोले तो संभव नहीं होगा, इस युद्ध के बाद मैं रहूंगा, और अभी तक एक चिरंजीवी है अश्वत्थामा, अभी तक इस धरती पर है, अव्यक्त रूप में है, और बहुत दिन के बाद तो फिर व्यक्त होंगे व्यास के रूप में, और उसके बाद सप्तर्षि में एक होंगे अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य को कैसे बात करना संभव होगा? खाली एक शर्त है कि अश्वत्थामा का वध के बाद, लेकिन अश्वत्थामा का वध संभव नहीं है। तो द्रोणाचार्य इतना तेज से युद्ध किया था भीष्म पितामह का पतन के बाद कि ऐसे लगते है कि पूरे पांडव के सैन्य तो एक दिन में सबका पूरा नष्ट होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि क्या उपाय है द्रोण को मारना, द्रोण के मारना। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताए तो आप घोषणा करो अश्वत्थामा मार गए। और युधिष्ठिर बोलेगा क्या तो जीवन में मैं एक बार झूठ नहीं बोला था। भगवान कृष्ण बोलेगा इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको, क्योंकि अगर कोई दूसरे कहेंगे तो द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज का कुछ संकोच था क्योंकि और सत्यवादी युधिष्ठिर की प्रसिद्धि है कि सत्यवादी है, तो जिससे वो अश्वत्थामा सत्यवादी की प्रसिद्धि से छूट नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण आदेश दिया कि हमारे फौज में एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा, उसको मारा दो। फिर युधिष्ठिर घोषणा करेंगे अश्वत्थामा हत्या, अश्वत्थामा मार गया। फिर उसके बाद शंख बजाना होगा और कुंजरोबा नारोबा ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानी है। तो वो फिर वो कि अश्वत्थामा मार गया, वो समाचार द्रोणाचार्य सुने, किसने बोला? युधिष्ठिर। ओ तो ऐसे द्रोणाचार्य ऐसे तो हताश हुए और युद्ध करना बंद किया, और ऐसे आसानी से उनका वध करना संभव था। तो यही अधर्म है नहीं, ऐसे झूठ बोलना, या पूरा झूठ नहीं है लेकिन एक छल से अश्वत्थामा हत्या। तो उसके पहले देवों का वर से युधिष्ठिर का रथ भूमि से थोड़ा ऊपर चलता था, और वो अश्वत्थामा हत्या वचन कहने के पश्चात तो भूमि पर गिर गया था, और साधारण रथ जैसे भूमि पर चलता था। तो नास्तिकगण कहते हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर उनका आचार्य को झूठ बोले, तो किसी को झूठ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उनका परम मान्य आचार्य को झूठ बताए, इसलिए उस पाप से उनका रथ नीचे गिर गया। तो नास्तिकगण ऐसे बोलते हैं। वास्तविक कारण है कि क्योंकि युधिष्ठिर का संकोच था भगवान कृष्ण का आदेश पालन करने, इसलिए उसका रथ गिर गया ऐसे। क्योंकि युधिष्ठिर तो परम भगवत, परंतु लीला में ऐसे व्यवहार होते हैं, ये सब वृतांत से भगवान श्री कृष्ण हमको शिक्षण देते हैं। तो क्योंकि युधिष्ठिर का संकोच था भगवान कृष्ण का वचन पालन करने, उस दोष से उनका रथ गिर गया और भूमि पर चलता था। तो कृष्ण ऐसे अधर्म किया है? नहीं, अधर्म नहीं, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य था वो पापी दुर्योधन राजसिंहासन से निकलना और उस पर युधिष्ठिर महाराज को बैठाना, और उस उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ऐसे करना जरूर था। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इनकी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते, परंतु हमको शिक्षण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण वो पूरा महाभारत और कुरुक्षेत्र का युद्ध, इनकी शक्तियों से उन्होंने ये सब व्यवस्था की। तो भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापन आर्थया, धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, परंतु इस प्रकार व्यवहार से भगवान कृष्ण हमको शिक्षण देते हैं कि जितने भी हम प्रयास करते हैं पूरा धार्मिक होना इस भौतिक संसार में, चूंकि इस भौतिक संसार का स्वभाव दूषित है, इसलिए पूरा धार्मिक विधि के अनुसार सब कुछ पालन करना तो सभी स्थिति में संभव नहीं है। इस प्रकार महाभारत में और बहुत उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और कहानी बताया कि एक सत्यवादी ब्राह्मण था जिनका संकल्प था कि मैं पूरे जीवन में कभी भी झूठी बात नहीं कहूंगा। तो एक दिन उनके कुटी के पास एक भयभीत व्यक्ति तुरंत आया, बोला कि मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत सोना है, व्यापार के लिए मैं सोना ले जा रहा हूँ, ले जाता हूँ, परंतु मेरे पीछे पीछे कुछ डाकू आ रहे हैं, वो मुझको वध करना, वो सब सोना लूटना, तो मुझे शरण दो। तो वो सत्यवादी ब्राह्मण बोले तो वो पास में जंगल जाओ, वहाँ रहो। तो दो तीन मिनट के बाद वो डाकू का दल सब आए थे और बोले कि क्या वो कोई व्यक्ति देखा था? हाँ, एक व्यक्ति को देखा, वो एक शेठ है, उसके पास बहुत धन है, हम डाकू है, वो सब धन लूटना उसके पीछे पीछे हम आ रहे हैं, उसको देखा? कहा हाँ देखा था। वो कहाँ है? वो उस जंगल में, वो वहाँ गए। तो वो सब डाकू वहाँ गए, वो शेठ को मिला, उसका गला खट के वो सब सोना लेके गया। तो इस प्रकार वो सत्यवादी ब्राह्मण उनका संकल्प पालन किया था और मिथ्या बात नहीं बोला, लेकिन उसका फल था कि मृत्यु के पश्चात नरक गया था, क्योंकि उसी हाल में झूठी बात नहीं बोला उस अवस्था में, क्योंकि धर्म का विचार में सत्य वचन बोलने का संकल्प करना चाहिए, और एक और विचार है कि पुण्यशाली लोग का रक्षा करना, तो वो व्यक्ति की रक्षा करने के लिए उसी स्थिति में झूठ बोलना पुण्य था, और अपना व्रत भंगना वो तो होने चाहिए उसी अवस्था में। अर्थात इस भौतिक संसार में धर्म संकट आएगा, तो हम पूरी विधि के अनुसार हम पूरा धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत उस प्रकार है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वो सब परित्याग करके इस धर्म पालन करो, मेरे शरण में आ जाओ। तो परम धर्म है कृष्ण धर्म, कृष्ण का वचन पालन करना, और कृष्ण का वचन यदि साधारण धर्म के विरुद्ध है तो फिर भी कृष्ण का वचन पालन करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हर भजन भक्तोऽथ पतितो यदि यत्र क्वाबा भद्रम भूदमुषकिं कोवाप्तरार्थं भजतो स्वधर्मतः। कि यदि एक व्यक्ति उस साधारण स्वधर्म छोड़ के संकल्प करते केवल श्री कृष्ण की सेवा करना, परंतु वो सेवा भी पूरी तरह नहीं कर सकते, तो वो संकल्प करने से कि मैं कृष्ण सेवा करना चाहता हूँ कुछ अभद्र नहीं होते। और यदि कोई व्यक्ति तो पूरी तरह स्वधर्म पालन करते परंतु कृष्ण की सेवा नहीं करते, उससे कुछ वास्तविक भद्र नहीं होते। और भी शास्त्र में देवर्षि भूतापतनुनाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मन यः शरणं शरण्यं कतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्। तो वो व्यक्ति जो पूरी तरह मुकुंद भगवान की शरण में आते हैं, और इसलिए पितृगण देवगण ऋषिगण और साधारण मनुष्यों और अन्यों की सेवा नहीं करते तो वो तो दोष नहीं है। तो सामान्यतः हम सब ऋणी हैं, हम देवगण से, ऋषिगण से, साधारण मनुष्यों से, साधारण प्राणियों से हम ऋणी हैं, क्योंकि देवगण से हम सूर्य का रश्मि हम मिलते हैं, सूर्यदेव से, इंद्रदेव से हम बारिश मिलते हैं, चंद्रदेव से हम चंद्र की रश्मि मिलते हैं जिससे वनस्पति का पोषण होते हैं, और ऋषिगण से हम ज्ञान मिलते हैं देवर, और पितृगण से हम ऋणी है क्योंकि ईश्वरीय तो हमारे पुरुषों से हम मिले, और अन्य नारियों से हम ऋणी है क्योंकि सहयोगिता से पूरा समाज चलते, और अन्य प्राणियों से हम ऋणी है, विशेषकर गौ माता से और घोड़ा और कुत्ते भी कुछ मनुष्य सेवा करते, कुत्ते तो गांव का पाल होते, तो ऐसे हम ऋणी है, परंतु वो सबों की सेवा चर्क है। यदि कोई व्यक्ति तो पूरी तरह भगवान मुकुंद सेवा करते उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार परम धर्म है कृष्ण सेवा करना, धर्म पालन करने से एक व्यक्ति पुण्यवान होते हैं, और कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त भी धर्म पालन करना चाहिए। परंतु कृष्ण भक्ति में यदि साधारण धर्म में विरोध होते हैं तो कृष्ण के भक्तों फिर भी कृष्ण भक्ति करते हैं और उसमें कोई पाप नहीं होते, वो परम धर्म है। तो परम कर्म, परम ज्ञान, परम योग, भक्ति है, और सब कर्म ज्ञान योग की सिद्धि होती है भक्ति प्राप्ति, क्योंकि भक्ति है परम कर्म, परम ज्ञान, परम ध्यान, भक्ति है परम धर्म, परम अर्थ, परम कर्म, परम मोक्ष, सभी दृष्टिकोण से कृष्ण की भक्ति करना सब मानव के लिए श्रेष्ठ पंथ है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। इसलिए हम आप सबों से विनती करते हैं, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जप और कीर्तन कीजिए, और कृष्ण भक्ति धर्म पालन करने से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो
बेटा भक्ति करे तो माँ बाप भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तो क्या तुम बेटे भक्ति करे और माँ बाप नहीं करे तो चल जाते, तो बेटा करे और माँ बाप भगवत में पहुंच जाते, तो क्या तुम बेटा भक्ति कर सकते हैं?
क्या प्रश्न था?
हरे कृष्णा।
हाँ, सुन रहे हैं ना, इसको देखे मेरा ध्यान अलग हो गया।
ऐसा कहते हैं कि बेटा अगर भक्ति करता है तो माँ बाप भी भगवत धाम पहुंच जाते हैं, तो क्या सिर्फ बेटा भक्ति करे और माँ बाप नहीं करे तो ऐसा कर सकते हैं?
आई डिडंट अंडरस्टैंड क्या
बेटा बेटा को बेटा से भक्ति करो माता पिता भक्ति करने के लिए जरूरत
हाँ हाँ देवर्षि भूतापतनृणां पितृ बेटा तो भक्ति करते हैं और माता पिता की सेवा करने चाहिए कि नहीं? तो माता पिता की सेवा वो भी आवश्यकता है, परंतु पिता यदि हिरण्यकशिपु जैसे हो ऐसे पिता की सेवा नहीं करना चाहिए। पिता यदि आदेश देते मांस खाओ, अंडे खाओ, मछली खाओ, ओ अच्छा वो प्रश्न है। ओ मेरा बेटा भक्ति करता है इसलिए और उसकी भक्ति से मैं मोक्ष मिलूंगी, तो मेरे लिए भक्ति करने का जरूरत नहीं। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष तो कुछ नहीं है। मोक्ष मिल सकते है तो बेटा की भक्ति से आप भक्ति मिल सकते, मुक्ति मिल सकते, लेकिन मुक्ति तो जीवन की परम सिद्धि नहीं है। भक्ति आप भक्ति करो, या इस प्रश्न में क्या आप बेहतर हैं? आप आपके माता पिता ऐसे बोलते क्या? यदि कोई ऐसे बोलते मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, क्या है कैसे बोलते मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं? कौन ऐसे बोलते? आसुरिक लोग ऐसे बोलते। दो भूत सार्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त भवेद् दैव असुरस्तद् विपर्ययः। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है देव और दूसरे प्रकार है असुर। देव है विष्णु भक्त और असुर है जिनके विपरीत स्वभाव है। तो देवगण भक्ति करते हैं और जो बोलते हैं मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोग तो असुर है। तो हिरण्यकशिपु तो मुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्त किया, परंतु प्रहलाद तो भक्त थे। भक्ति से उदासीन होने से भक्ति प्राप्ति नहीं होते, तो सबकी भक्ति करनी चाहिए। नहीं है तुम एक गुरु भी ऐसे बोल सकते कि शिष्यों तुम लोग भक्ति करो, तुम लोग भक्ति करो और मैं दुनिया का भोग करूंगा, तुम लोग भक्ति करो उससे मैं भक्ति मिलूंगा। लेकिन भक्ति तो भक्ति से आते, अभक्ति से भक्ति नहीं आते। मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं, ऐसे कौन ऐसे बोलते? रावण बोलते, हिरण्यकशिपु बोलते। हरे कृष्ण।
उसका फल उस परिवार को उसके माता पिता को मिलेगा या नहीं, वो ये जानना चाहते हैं।
एक परिवार में जिसमें कोई भक्ति नहीं करते लेकिन एक बेटा भक्ति करना शुरू करते हैं, फिर
तो क्या उसका फल उसके माता पिता परिवार को मिलेगा या नहीं?
फल माता पिता फल मिलेंगे यदि वे भी भक्ति करेंगे, जैसे जगन्नाथ दास भक्ति शुरू किए और अभी इनकी माता भी भक्ति करते हैं, पिताजी थोड़े से, और आप गोयल साहब आपका लड़का तो पहले भक्ति की और अभी आप माता पिता बेटी भी सब। लेकिन यदि आप नहीं किए तो, तो अलग था ना वो, यदि आप ठीक है आप तुम भक्ति करो और मैं घर वापस आकर टीवी चालू करूँगा हर रोज, जैसे सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो फल एक ही होता क्या? अभी वो भावना जो आप महसूस करते हैं तो पहले से एक ही है कि नहीं? आप क्यों यहाँ आते हैं और घर में टीवी देख नहीं देखते, अलग है नहीं? तो मैं घर में टीवी देखूंगा और मेरे बेटा तो भक्ति करते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन तो फल तो एक ही नहीं है। आपको भी भक्ति करने चाहिए, ऐसा और कोई दूसरे है यहाँ पर जो जिनके बेटा तो पहले भक्ति की, या कोई है जो बेटा है और इनके माता पिता उनकी प्रेरणा से भक्ति की, ऐसे है और कोई दूसरे? माधवेंद्र नारायण आपका मेरे तो नहीं है, कोई दूसरे? अच्छा हो यदि आपके माता पिता या लड़के लड़कियों भक्ति में आते हैं आप आपकी प्रेरणा से, परंतु वसुंधैव कुटुंबकम् जो भक्ति दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं कि पूरा विश्व के वासियों मेरे कुटुंब है, भगवान स्वयं कहते हैं प्रसिद्ध धर्म संस्थापन आता या संभव आम युग युग।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ किन परिस्थितियों में साधारण मनुष्य की
कौन सी परिस्थिति में क्या भगवान
नहीं, आम आदमी सामान्य व्यक्ति किसी ने वचन दिया जिससे कि वो असत्य नहीं बोलेगा, लेकिन किन स्थिति में वो असत्य बोलेगा तो उसको भी सही
माना
जाएगा? नहीं समझ। भगवान असत्य बोल,
कौन सी परिस्थिति में हम असत्य बोल सकते? तो सब लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करते सब कुछ जो बोलते सब असत्य है, और भक्तों सब कुछ जो कहते वो सब सत्य है, क्योंकि अभक्तों का उद्देश्य असत है। ओ मैंने नया मोबाइल फोन खरीदे, ओ कितना सुंदर है और कितना अच्छा है, असत असत असत्य। ओ और भक्तों नया मोबाइल खरीद लिया था कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, वो सत्य है। कृष्ण सेवा में यदि जरूरत हो तो बोलना चाहिए, जैसे मैं साल में कई बार ऐसे देश जाता हूँ जिसमें वो टूरिस्ट जैसे जाना पड़ता है, ऐसे कुछ मुस्लिम देश ऐसे, तो किस लिए आया था, टूरिस्ट हूँ ऐसे, वो पासपोर्ट में मारते स्टाम्प मारते। यदि कहता हूँ तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे, तो कृष्ण सेवा करने के लिए तो ऐसे ही करना चाहिए, पूरा जूद नहीं है तो थोर भी करूँगा मैं, वो उस देश में भ्रमण करूँगा, लेकिन पर्यटन के लिए नहीं। हम जैसे पेरिस जाता हूँ तो आइफल टावर देखने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं इतने सारे साल भारत में हूँ और लगभग सब टूरिस्ट जो विदेश से आते हैं तो ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, मैं एक बार भी नहीं गया था। एक बार आगरा में था और बहुत दूर से ताजमहल को देखा, लेकिन खास उसको देखने के लिए नहीं गया। तो वृंदावन जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, तो ये पुण्य तीर्थ जाता हूँ, वो आध्यात्मिक पर्यटन है। तो अपना काम में तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। शिल प्रभुपाद उनका भगवद्गीता यथारूप तात्पर्य, एक तात्पर्य में लगते है कि व्यापारी का कभी कभी बहुत दफे झूठ बोलना पड़ता है। जैसे एक व्यापारी कहते हैं कि हे हे प्रियजन, आपके लिए मैं कुछ लाभ नहीं लेता हूँ, लेकिन वो लाभ नहीं लेने तो कैसे चलेगा व्यापार। सब वो कस्टमर भी जानते हैं कि वो झूठ बोलते, तो फिर भी ऐसे कहते कुछ कुछ लाभ नहीं लेता हूँ, आपके लिए मैं विशेष ऐसे विचार करते कुछ लाभ नहीं लगता। तो एक उदाहरण है वो झूठ, लेकिन उससे बड़ा दोष नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और इसके बारे में वो भगवान क्या कहते, सब आरम्भ ही दोष है ना, इस भौतिक संसार में सब सब कुछ जो हम करते हैं उसमें कुछ दोष होगा, लेकिन यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं उसमें कुछ भी दोष नहीं होता। कृष्ण भक्ति नहीं करना वो सबसे बड़ा दोष है और उससे सब दोष का फायदा होता। हरे कृष्ण।